ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज श्री शिव गीता स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय श्री रजनीकांत चांदवडकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
शिव गीता अध्याय 13वां। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न हो गिरिजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कृपा सागर भगवन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, सालोक्य सारूप्य साष्टर्य सायुज्य और कैवल्य यह मुक्ति के 5 भेद है। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करते हैं, वह मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं और उनके और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगते हैं। और जो मेरा स्वरूप जानकर निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलाषित भोगों का भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मेरी प्रीति के निमित्त इष्टपूर्तादिक कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी जगत के कर्तापन आदि से व्यतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है, इसे साष्टर्य मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक मुझे ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत स्वप्रकाश ब्रह्म के तद्रूप को प्राप्त होता है। जो जीव का यथार्थ स्वरूप है, इस स्वरूप से अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। सत्य ज्ञान अनंत आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सब धर्म रहित मन और वाणी से परे सजातीय और विजातीय पदार्थों के उसमें न होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्म रूप जानकर संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं है और उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, इसी प्रकार से यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है, वास्तविक मिथ्या है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से परे एक मैं ही विद्यमान रहता हूँ। मैं नित्य परमानंद स्वप्रकाश और चिदात्मा हूँ। काल दिशा विदिशा पंचभूत इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूँ। मेरे निर्गुण स्वरूप कोई नील पितादि आकार और वर्ण का नहीं है और इन चर्म चक्षु से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानते हैं, वे ही ज्ञान मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो इसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवत समझकर भार्या मित्र पुत्रादि इन सब को क्लेश दाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करे और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट जाए। उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रखकर दंडवत नमस्कार करे, फिर उठ के हाथ जोड़ के इच्छित अर्थ का निवेदन करे। बहुत काल तक सावधान हो, इन्हें सेवा से संतुष्ट करे और मन लगाकर सब वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करे और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चय कर ले। इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है। लोहमणि आदि के दृष्टांत सद्युक्ति से, जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है, इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से जगत भ्रमण करता है। श्रवण को पुष्ट करके मनन करे अर्थात उसका चिंतन करे, वाक्यार्थ के विचार का ही नाम मनन कहा है। ममता और अहंकार रहित सब में समान संग वर्जित शांति आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा का आत्मा से ही ध्यान करने को निधिध्यासन कहते हैं। संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। जिसे प्रतिबंधक बंधक नहीं होता उसे शीघ्र, और जिसे प्रतिबंधक होते हैं उसे देरी में होता है। जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्म संग्रह किए कर्म हैं, वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। कर्म चाहे दश सहस्त्र करोड़ न से नष्ट नहीं होते। ज्ञान होने पर जो कुछ पुण्य व पाप थोड़ा या बहुत किया जाता है, उससे यह प्राणी लिप्त नहीं होता। और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण का हेतु प्रारब्ध का कर्म है, वह भोगने से ही नष्ट होगा, ज्ञान से नहीं। जिसको मैं अहंकार नहीं है, जिसको अहंकार नहीं है, जो संपूर्ण संग से रहित है, संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में और संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा को देखता है, इस प्रकार ज्ञान युक्त विचारता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहता है, कहलाता है। कारण कि वह प्रारब्ध कर्म क्षय के निमित्त विचरता है। सांप की केचुली सर्प सहित जिस प्रकार देखने वालों को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती, इसी प्रकार माया मुक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार के संसार भय प्रतीत होते हैं, वही जीवन मुक्त होने से फिर कहीं किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। जिस समय इस प्राणी के हृदय की वासना संपूर्ण नष्ट हो जाती है और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी यह प्राणी अमृत हो जाता है। यही वेदांत शास्त्र की मुख्य शिक्षा है। जिस प्रकार कैलाश वैकुंठ आदि दिव्य लोक है, इस प्रकार मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्त किसी ग्रामांतर का निवासी नहीं होता, केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने से मुक्त होता है। जिसका वृक्ष अग्रभाग से चरण आगे पड़ता है, वह उस समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इस संसार से वह तत्काल छूट जाता है। जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में वा चांडाल के घर में देह त्याग करे अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करे, किंवा अचेतन होकर मृतक हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त ही हो जाता है। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे वा नग्न, भक्ष अथवा अभक्ष, कुछ भी खाए चाहे, जहां शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ घृत यदि फिर दूध में डालो, वह घृत उसमें नहीं मिलता, उसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं, वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। हे राम, तुम्हारा अंतकरण जो संशय के वश में हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु शिवराघव संवादे त्रयोदशोध्यायः।
शिवगीता अध्याय 14।
शिवजी से ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सुनकर अब दूसरे साधनों से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले। श्री राम उवाच, हे भगवन, यद्यपि तुम्हारा रूप सच्चिदानंदक सच्चिदानंदात्मक निरवयव क्रिया शून्य और निर्दोष है, तथा सब धर्मों से परे मन और वाणी के अगोचर तुमको सर्वव्यापक होने से जीव सर्वस्थान में स्थित आत्मा स्वरूप से देखता है। आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों का आत्मा अर्थात सब जीव जिसके अंश है, जो कारण का कारण अदृश्य स्वरूप है, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से अग्राह्य है, वह ब्रह्म ग्राह्य कैसे हो सकता है? उस सूक्ष्म में चित्त की वृत्ति किस प्रकार हो सकती है? यह मुझे संदेह है, इसी से बुद्धि व्यग्र है, इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री भगवान वाच। शिवजी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूं। प्रथम सगुण उपासना करते रहो, चित्त को एकाग्र करे और स्थूल सौरांभिकान्यास से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवृत्त करे। स्थूल सौरांभिका न्याय इसको कहते हैं कि प्रिय मनुष्य को जिस प्रकार मृग जल दिखाकर रवि यथार्थ जल है ऐसा प्रतारणा से बुलाकर फिर वास्तविक जल दिखाते हैं, इसी प्रकार प्राणी को प्रथम साधन आदि का उपदेश कर पीछे ब्रह्म ज्ञान कथन करते हैं, और इस प्रकार जाने की जानकर कि इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म मृत्यु व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है, अर्थात निश्चय यही इसकी दशा बदलती रहती है। ऐसे स्थूल देह में प्राणों को अहम भाव से जो आत्मबुद्धि दृढ़ हो जाती है वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और इसका नाश भी नहीं होता, कारण कि यह नित्य है। अब शरीर की अवस्था वर्णन करते हैं, इसकी निस्सारता प्रतिपादन करते हैं। उत्पत्ति अस्थि परिपक्वता वृद्धि क्षय और नाश, यह छह अवस्था इस शरीर की है, और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है। इस प्रकार देह और आत्मा इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध है। अज्ञानी जन अविद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं। घड़िया में गला करके डाले सुवर्ण की कांति के समान प्राणमय कोश है, यह स्थूल देह के अंतर प्राणादि वायु से बद्ध वर्तमान है, परंतु वायव्यादि इंद्रियों से पायवादि इंद्रियों से युक्त चलनादि कर्मों से युक्त क्षुधा पिपासा से व्याप्त और जड़ होने के कारण यह आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य रूप है जिसके द्वारा यह जीव अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही परब्रह्म निर्लेप और सुख का सागर है। अज्ञान इस ब्रह्म का ग्रास नहीं कर सकता, न ब्रह्म किसी वस्तु का ग्रास करता है, अर्थात वह अनामय परिपूर्ण सर्वत्र सुख स्वरूप है। उसे कार्य कारण की अपेक्षा नहीं है, उस प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश है। वह संकल्प विकल्प रूप बुद्धि और इंद्रियों से समायुक्त है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य और मद यह शत्रुओं का षडवर्ग और ममता इच्छा आदि यह संपूर्ण मनोमय कोश के धर्म है। जो कर्म विषयिनी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। इसमें कर्तृत्वपन का अभिमानी निस्संदेहपन वह जीव विद्यमान है जो इस लोक तथा परलोक में गमन करता है, व्यवहार में जिसको जीव कहते हैं। आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से घ्राण, जल से जिह्वा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह इंद्रिय पांच भौतिक है, जीवत्व प्राप्ति के तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरों में पांच कोश रहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोश है। इन पांचों कोशों में अन्नमय कोश से वर्णन करके लिंग शरीर के तीनों कोश कहकर लिंग शरीर के अवयवों का वर्णन किया है। इन पांच भूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है, और वचन, हाथ, पाद, पायु, उपस्थ, यह पांच कर्मेंद्रिय तो आकाशादिकों के गुण रजोगुण अंश से क्रम पूर्वक उत्पन्न होते हैं, और उन सबके रजोगुण समान मिलने से पांच प्राण आदि वायु उत्पन्न होते हैं। यही पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन और बुद्धि मिलाकर 17 अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तपाए हुए लोहखंड की समान गोल है, इस कारण परस्पर के अध्यास पढ़ने से साक्षी चैतन्य से युक्त है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वही आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश का जो कर्तृत्वपन का अभिमान है, वही उपासना और कर्म फल से इस लोक तथा परलोक में कर्म फल का भोगने वाला कहा जाता है। और जिस समय निद्रावस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में अविद्या संयुक्त रहता है, तब इसकी साक्षी संज्ञा है। अंतकरणादि इंद्रिय और इनकी वृत्ति, अनुभव और स्मृति, इनका दृष्टा होने से अंतकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और केवल यानी अंतकरण का अध्यास नहीं ऐसा हुआ तब भोक्तृत्व होता है। इसके उपरांत आतप बिना आच्छादित बिंब रूप ईश्वर, छाया आच्छादित बिंब रूप जीव, यह दोनों ब्रह्म ही के प्रकाश से प्रकाशित है। इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फल को भोक्ता है और ईश्वर दृष्टा होने से भोक्ता नहीं, ईश्वर दृष्टा होने से भुगाता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम कहते हैं, सो तू जान। इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूपादि विषय रूपी स्थान में विचरते हैं। इंद्रिय और मन के सहित यह आत्मा भोक्ता कहलाता है। वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है, कदाचित कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यही है कि रति तो रथ में बैठा है, सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाए उधर ही जाता है, और यदि दुष्ट घोड़े हुए तो सारथी का भी कहना न मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। इसी प्रकार दुष्ट इंद्रिय इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकती है, तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होता है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है, वह जिस प्रकार से कदली के वलकल को बराबर उतारते चले जाओ तो उसमें वलकल ही निकलते हैं, पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचकोश में क्रम से उपासना करते और उनसे चित्त हटाते तथा उन्हें असार रूप जानते हुए सबके अंतसार भूत आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सावधान करके पंचकोश का ज्ञान करके जो मन स्थिर करता है, तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है। तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य, अग्राह्य, स्थूल, सूक्ष्मादि धर्म से परे है, उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है। फिर चलायमान नहीं होता। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जब श्रवणादि साधन द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? और कोई सुनकर भी आत्मा को जान नहीं सकते और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं, क्या यह तुम्हारी माया है? श्री शिवजी बोले, हे महाबाहो, यह ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी त्रिगुणात्मिका माया का उल्लंघन करना महाकठिन है। जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं, वे ही इस माया को उतरते हैं। हे महाभुज, जो अभ्यभक्त है और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलता है, वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट है। कर्म फल क्षय होने वाला है तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहां जहां अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं, वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बारंबार मृत्यु मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्म के संचित किए पुण्य से मेरे विषय में भक्ति होती है। वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है और दूसरा करोड़ों जन्म में भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्मों का त्याग न करके एक मेरी शरण में हो, मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। तुम कुछ भी मत सोचो। हे राम, तुम कुछ कर्म करते, जो भोजन करते, जो हवन करते और जो देते हो तथा जो तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरे में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिय और प्राण तथा मन के जो जो धर्म हैं, उनका त्याग करके मुझको आश्रित हो, अर्थात मुझे प्राप्त हो। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु शिवराघव संवादे पंचकोशोपपादनम नाम चतुर्दशोध्याय। शिवगीता अध्याय 15वां।